जो विद्या सागर सुधी जो विद्या सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म नित्य हितोपदेशी केवल ज्ञान पानी पूजूं है सतत केवल ज्ञान पानी। बोले भगवान महावीर स्वामी की उत्तम तप धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज दशलक्षण पर्व का सातवां दिन है। अपन लोग तप धर्म के बारे में विचार करेंगे। हमारे जीवन में हम जो ऊर्जा संग्रहित करते हैं उसका किस तरह प्रयोग करें, यदि हम ये नहीं जानते तो फिर वो जो संग्रहित ऊर्जा है उसका सदुपयोग न होकर के दुरुपयोग होगा, और हमारे उस ऊर्जा के द्वारा जो हमें प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त भी नहीं होगा। जो अपनी कषायों को जीत लेते हैं और अपने जीवन में जब सत्य धर्म का पालन करते हैं और सच्चाई जो है मालूम पड़ जाती है, तो हमारा जीवन संयमित होने से अत्यंत ऊर्जावान हो जाता है। जिसके जीवन में जितना संयम होगा उसके जीवन में उतनी अधिक ऊर्जा संचित होगी। अब फिर उस ऊर्जा का क्या करना, उस ऊर्जा को तपस्या में लगा देना। तो उस तपस्या के द्वारा जो कुछ भी अतिरिक्त है, जो कुछ भी हमारा नहीं है, वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और हमारी अपनी चेतना उस तपस्या में लगी हुई ऊर्जा से धीरे धीरे विशुद्ध होने लगती है। जैसे कि किसी भी चीज को हमें और निखार लाना हो, उसे उज्जवल बनाना हो, तो हम अग्नि में उसे तपाते हैं तब वो और उज्जवल हो जाता है। ठीक ऐसा ही ये तप है। आज हमें समझना है कि कैसे हम अपने जीवन में जो अनंत शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है उसको तपस्या के द्वारा कैसे हम उद्घाटित करें। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे अंदर अनंत शक्ति है इसका हमें ही विश्वास नहीं होता, हमें अपनी ही क्षमता का विश्वास नहीं होता और फिर हम भटकते रहते हैं। कहीं और से हमें क्षमता प्राप्त हो जाए, शक्ति प्राप्त हो जाए। ये तपस्या हमारे भीतर की उस अनंत शक्ति से हमारा परिचय कराती है। जब छोटे छोटे से व्रत नियम संयम करना हम शुरू कर देते हैं तो हमारे भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता कि नहीं, कि हम ये कर सकते हैं। इस तरह हम अपने अंदर जो अनंत शक्ति है उसे आसानी से तप के द्वारा उद्घाटित कर सकते हैं। एक बहुत गरीब आदमी था और रास्ते के किनारे बैठा लोगों से दो दो पैसे मांगते फिरता था भीख में, तो लोग दे देते थे, उसका काम चल जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नहीं रहा, जिंदगी उसकी पूरी हो गई और वो जैसे तैसे लोगों ने मिलकर के और उसकी लाश को जला दिया। वो जगह उसके रहने से बहुत दिन से काफी गंदी हो गई थी, तो लोगों ने सोचा जरा इसको भी साफ सफाई कर दें। तो लोग साफ सफाई करने वहां जुट गए और थोड़ा सा ही मिट्टी ऊपर की हटाई तो देखा नीचे एक घड़ा था जिसमें सैकड़ों सोने के सरफियां भरी हुई थी। जिंदगी भर उसी घड़े पर, सोने के भरे हुए घड़े पर बैठ के दो दो पैसे भीख मांगता रहा। उसको खुद नहीं मालूम था कि खजाना मेरे ही नीचे है। हम लोग के साथ भी यही है। हम इंद्रिय सुखों से, हम अपने छोटे छोटे से बाहर के सुखों के लिए कैसे लालायित होकर के हाथ फैलाते रहते हैं, मांगते ही तो रहते हैं पूरी जिंदगी, इससे उससे, अपने स्वयं के जीवन से भिखारी बने। अपनी उस अनंत संपदा को जो कि हमारे अपने भीतर बैठी हुई है उसे भूल करके, जब तक हमें अपनी उस अनंत संपदा का या अपनी उस अनंत शक्ति का स्वयं विश्वास नहीं होगा, तब तक जो है हम उसको प्राप्त कैसे कर पाएंगे। आज तब के दिन सबसे पहली बात कि मेरे भीतर अनंत शक्ति है, ये बात मुझे संयम के पालन करने से मालूम पड़ गई। मैं सोचता था कि मैं तो इन इंद्रियों के विषयों को छोड़ ही नहीं पाऊंगा, मैं तो जैसा मन में आता है वैसा ही कर पाऊंगा। फिर मैंने देखा कि नहीं, मैं अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित कर सकता हूँ। इस नियंत्रण से धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे भीतर अनंत शक्ति है। अब अगर मैं चाहूँ तो तपस्या के द्वारा अपनी उस अनंत शक्ति को आसानी से प्रकट कर सकता हूँ। तपस्या तीन तरह से की जा सकती है और तीन तरह से ही की जाती है। तपस्या तीन तीन भेद दोनों तरह के, तपस्या के भी तीन भेद हैं और तपस्या तीन अलग अलग स्तर पर की जाती है। वाणी से भी तप किया जाता है, शरीर से भी किया जाता है और मन से भी तप किया जाता है। और वो तप तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो
तांत्रिक तपस्या वो कहलाती है जिसमें हम शास्त्र की विधि का निषेध करते हैं और अपने मन माने ढंग से तपस्या ग्रहण कर लेते हैं। हमारी तपस्या का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि उनसे हमें ज्यादा करना है। जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं करके आश्रय में डाल दूंगा लोगों को, तो इन लोगों का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में आ जाता है।
ये सब तपस्वी लोग जो है उसमें अपना नाम लिखवाते हैं। ये तांत्रिक तपस्या है जिसमें कि हम सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं इतना कर सकता हूं, अभी तक जितने रिकॉर्ड हैं मैं उन सबको ब्रेक कर दूंगा, मैं एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। ये जो इंटेंशन है, इस तरह की तपस्या अगर की जाएगी तो फिर वो सब तामसिक तपस्या है। एक होती राजसिक तपस्या, मान सम्मान की आकांक्षा से। आज उपास करें तो भैया ने बताई मूल पे तो हाथ फिर है और बढ़िया रसुल्ला खुआ है, उपास करो और चार लोगों में मालूम पड़ेगा तो हमारा जुलूस निकलेगा और फिर लोग हमारा सम्मान करेंगे। अगर ऐसी आकांक्षा, हाँ हो जाता है कई बार ऐसी आकांक्षा है, तो वो सारी तपस्या राजसिक तपस्या। तीसरी तपस्या है सात्विक तपस्या। हमारे यहाँ उसी का महत्व है, उसके जो शास्त्र की विधि के अनुसार की जाती हो, गुरु के प्रति श्रद्धा पूर्वक की जाती हो और जिसका उद्देश्य अपने आत्मा को विशुद्ध करने का हो, कर्मों की निर्जरा का हो। कर्म निर्जरार्थम तपति इति तपः, जो कर्मों की निर्जरा के लिए शरीर मन और वाणी को तपाया जाए, वास्तव में वही तप सात्विक है। लेकिन उसकी कसौटी है कि शास्त्र की विधि के अनुरूप शास्त्र में लिखा क्या है, शक्ति तस् त्याग। ये शास्त्र और शक्ति को बिना छुपाए हुए, दोनों कंडीशन है। ये शास्त्र की विधि है, अपनी शक्ति को छिपाना भी नहीं और अपनी शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना। आचार्य महाराज से जब हम लोग कहते थे कि हम दो उपवास करें तो कहते एक तो कर ही लो, दो उपवास की भावना हो तो एक कर लेना, सहसा दो मत कर लेना, नहीं तो तीसरे दिन गाड़ी गिर पड़ेगी, फिर चलने लायक भी नहीं रह जाएगी। मतलब शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना, लेकिन दो उपवास करने की शक्ति है और एक भी ना करो तो ये शक्ति को छिपा भी लिया, तो शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना। और गुरु की आज्ञा को ही महत्वपूर्ण मानना। आपके पास बहुत सामर्थ्य है तपस्या करने की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके गुरु की क्या आपके लिए आज्ञा है तपस्या के लिए, फर्क इससे पड़ता है तपस्या में। नैनागिर का उदाहरण है सन 78 का। उस समय हम आचार्य महाराज के दर्शन करने जाया करते थे, सबकी बात। और उस समय संघ में तीन ही महाराज हुआ करते थे, समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज। और तीनों छुटलक जी इलक जी थे। मुनि महाराज जी की तो पहली दीक्षा सनस्ती में ही, और द्रोणागिर में सबसे पहले समय सागर जी महाराज की दीक्षा हुई। उस समय तो मैं था। तो देखना उस समय अष्टमी और चतुर्दशी को सब लोग कुछ ना कुछ आचार्य श्री से लेते थे नियम। और समय सागर जी महाराज का तो नियम था कि वो अष्टमी को उपवास करते थे, चौदस को उपवास करते थे। पर जरूरी है कि आचार्य श्री से पूछना पड़ता, एक दिन पहले ही जो है पूछ लेते सप्तमी के दिन कि मेरा मन है कि कल उपवास कर लूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो ऐसा पूछना पड़ता। तो समय सागर जी ने हमेशा की तरह कि कल अष्टमी है, आपकी आज्ञा हो तो उपवास कर लो, उन्होंने कर लो तुम। उन्होंने उनको आपके बात चेंज कर दिया, हम सामने बैठे देख रहे थे, उन्होंने कहा उन्होंने कर लो और वो डरिए, अर्थात भूख से कम खाना ऐसा दे दिया, वो भी एक तप है। वो उपवास से ज्यादा कठिन तप है। उपवास के बाद उनोदर कठिन है, उनोदर के बाद जो है वृत्ति परिसंख्यान कठिन है, उससे ज्यादा कठिन रस परित्याग है, उससे ज्यादा विरक्त संयासन, उससे ज्यादा काय उत्सर्ग काय क्लेश, ये क्रम क्रम से कठिन तप है। अब उपवास में तो जो है कि न देखी न भौंकी, अपने जो मच्छी मारने बैठी कोई कुछ जा ही नहीं, चौका ही नहीं जा रहा। हम तो नहीं देखते थे बहन को मुको पत्नी को, बहन जी सुबह से इस जो है पूजा वूजा करने गई, अब संध्या तक नहीं लौटी। हमने कहा वाह भाई, फिर बाद में समझ नहीं आया कि अगर जी घर आ गए हैं तो खाने की इच्छा भी रात में होगा, पत्नी है मुको पत्नी, तो वही बैठे रहते। ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि विषय के साथ की सामग्री सामने आए और अपने को उस तरफ ध्यान न जाए, उसको जीतना ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो उनको अनुदर दे दिया। अब मूल सागर जी महाराज जो है उपवास तो करते नहीं थे, वो हमेशा अनुदर करते थे। उन्होंने सोचा कि अपन अब जब इनको उपवास नहीं दे रहे तो अपन काय को मांगो उपवास, तो उन्होंने मांग लिया हम अनुदर कर लें। तो बोले कल उपवास कर लो तुम। अब देखते इसका मतलब क्या है, अपनी तरफ से आप तपस्या करेंगे उसमें कर्मों की निर्जरा उतनी नहीं होगी, गुरु की आज्ञा से अगर आप तपस्या करेंगे, आप श्रद्धा पूर्वक सम्यक दर्शन के साथ किया गया तप जो है वो कर्म निर्जरा का कारण होता है। देखें आपकी श्रद्धा कितनी है, उसकी परीक्षा है ये श्रद्धा। तो सात्विक तपस्या जिसको भी करना हो, क्योंकि मां ही जानती है, जैसे कि छोटा सा बेटा आकर के जल्दी से कहता हमको दूध दो, हाँ देते हैं, और उतने में आ गया बड़ा बेटा, तो दूध दोनों को देना है। अब बड़े वाले बेटे को दूध देते समय थोड़ी मलाई धक्का दे दिया तो मलाई भी उसमें गिर गई। अब छोटे साहब देख रहे थे, मलाई हमारे में नहीं डाली, मलाई तुम्हारे में थोड़ा पानी डालेंगे बाबा, तुम इतनी पचानो अभी, मलाई डालना पसीजा नहीं तुम्हें, गड़बड़ होगी। तो वो जानती है कि इसको जो है अभी मलाई वाला नहीं देना है, किसको किसको कितना तप देना है ये गुरु जानते हैं। तप लेने वाले का उत्साह अपनी जगह है। हमको सबसे पहले जब चुल्लक दीक्षा के लिए निवेदन किया था तो ऐसे नहीं किया था कि चुल्लक दीक्षा दे दो, किया तो था मुनि दीक्षा के लिए, पर फिर क्या कहेंगे, तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, बनना तो मुनि ही चाहिए, पर अभी मैं तुम्हें शावक के 11 व्रत दे रहा हूँ, चुल्लक दीक्षा दे रहा हूँ। हमने कहा फिर काल को पहले कहलवाया कि मुनि के व्रत, तो तुम निवेदन तो बड़ा ही करो और हम देंगे तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार, तो मांगेंगे तो हम ज्यादा ही, हम रात्रि पानी का त्याग करेंगे। हाँ कर लेना रात्रि पानी का, अभी ठहरो थोड़ा है? हाँ अभी जरा बाजार की, अभी भक्ष पदार्थों का त्याग नहीं करो, अभी पहले अभक्ष पदार्थों का त्याग तो कर दो, रात्रि भोजन का तो त्याग लेने आ गए, पर जरा ध्यान तो करो कि बाजार में खाते हो, जल्दी जल्दी रात ना हो जाए, घर नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए दिन में ही होटल में घुस के खा लेने से अच्छा है घर पहुंच के 8 बजे अपने मताई के बनाओ हाथ को खाओ, भले ही रात को खा लो, वो होटल के खाने से अच्छा है। ये आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए देने वाले पे निर्भर है कि वो आपकी सामर्थ्य और आपकी योग्यता का विचार करके तपस्या करना। ऐसा नहीं है कि मन में आया और अपन ने कर लिया, नहीं, उसके लिए बहुत शास्त्रोक्त विधि से करना है और गुरु के प्रति श्रद्धा पूर्वक करना है, वे जितना बताएंगे उतना ही हमें करना। हमारा ये बहुत दिन के बाद पहली बार है कि चतुर्मास में चतुर्दशी को हमारा उपवास नहीं हो पा रहा। हमने आचार्य महाराज के पास निवेदन किया कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उपवास की जगह पर फिर दूध पानी लेके कर लें। तब उसके लिए भी उन्होंने कहा कि इतनी आकुलता क्यों है, मैं भी तो नहीं कर पा रहा हूँ उपवास, ऐसा कहा उन्होंने, मैं भी तो नहीं कर पा रहा इस बार, आराम से देख करके और जितनी अपनी शक्ति हो उतना ही कर लेना। ये हम तीन तीन बार कर रहे हैं, इसके लिए भी उन्होंने नहीं कहा था, उनका खबर आ गई थी कि एक बार प्रवचन कर देना और बाकी अपना नाम गाय शांति से करना। अब जो तीन ही तीन वीर लगाओं का हमने तो पा करना, अब तो मेरे तनक तो बैठ जाओ महाराज, वो तो जाकर पंडित जी को बस नहीं चलो, नहीं तो फिर 10:30 बजे हो रहे थे बिठा रहे क्या पंडित जी आप बैठी हो तो हाँ। पर वैसे धर्म ध्यान करने में का कोई निषेध नहीं है, लेकिन पहले अपनी शक्ति का भी, मेरा कहने का आशय यह है कि अपनी शक्ति का विचार भी करना, अपने गुरु की आज्ञा का भी विचार करना। अब हम नहीं कर सकते, देखो आज चुल्लक जी ने सामायिक से पहले ही जो है हमको कहा था कि आज अगर आपकी आज्ञा हो तो हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि आज सामायिक बैठेंगे और शाम तक, मैंने कहा भक्ति में भी बोले अगर मन लग गया तो सामायिक के बाद ही उठूंगा। मैंने कहा ठीक है आप कर सकते हैं, मैं अगर ऐसा करूं तो ये सब बैठे रहेंगे कि क्या करूंगा। आचार्य श्री भी कई बार ऐसा ही कहते थे कि अरे अब हमको तो करना पड़ेगा, अब तुम लोग तो अपना उपवास ले ले करके और अपने सुबह से उपवास लेके बैठे तो दूसरे दूसरे दिन तक, अभी भी कई महाराज वहां पर कर रहे हैं अमरकंटक में अभी, हाँ सब कर रहे हैं। संता सागर जी जो है अभी उन्होंने दो उपवास लगातार किए, मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किए, आचार्य श्री से मांगे भी तो उन्होंने कहा अभी नहीं। फिर एक दिन कहने लगे कि ये दो उपवास मांग रहा है सर, लिखना होगा ही इसकी। आचार्य जी करते हैं तो ऐसे कह दिया उन्होंने। फिर वही बात मैं आपसे कहूं कि गुरु की प्रसन्नता से, गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करके अगर हम तपस्या करते सबसे बड़ी कसौटी। एक और उदाहरण सुनाता हूं मैं आपको, एक बहुत अपने गुरु का और बहुत भक्त शिष्य था वो, तो बस उसकी और कोई ना उसको ज्यादा ज्ञान था ना और कोई विशेष तपस्या थी, बस गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी। तो लोग सब चिड़ती थी क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा होने से गुरु भी उसे बहुत चाहते थे, उस पर बड़ी कृपा थी गुरु की, और सारे आश्रम में जो है और जो लोग थे वो सब उससे बहुत चिढ़ते थे, सोचते थे कि ये ना रहे तो हम लोगों का जरा नंबर आ जाएगा, इसके रहने से हमारा नंबर ही नहीं आता, गुरु जी इन्हीं की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तब फिर जो है उन लोगों ने उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करी और क्या करा, एक दिन आश्रम में आग लग गई कमरे में, तो उससे कहा कि तुम बड़ी गुरु की अपनी श्रद्धा बताते हो, तुम्हारे अंदर गुरु की अगर इतनी श्रद्धा है तो जाओ वहां पर उस आग के भीतर घुस करके वो सामान रखा हमारा वो उठा के ले आओ। उसने कहा इसमें कौन सी बात, गुरु के प्रति तो मेरी श्रद्धा है, अगर तुम कहते हो तो मैं भी चला जाता हूं और भीतर गया, गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा है और अगर इन्होंने काम करना है तो मैं भी जाता हूं और जाकर के उठा रहा हूं, जला भी नहीं तो और बड़ा नदी पार करना थी। तो सबने उसे कहा कि अगर तुम देखें क्या है तुम्हारी गुरु के प्रति श्रद्धा तो वैसे ही नदी पार करो तो बताएं। तो वो सचमुच पानी पे चल के उस पार हो गया, उसकी श्रद्धा थी। एक बार उसको जो है पहाड़ पर से नीचे कूदने को कहा तो उसने कहा इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, सारी तरफ जो है उसका और नाम होने लगा। वो तो उसको रास्ते से हटाना चाह रहे थे, उल्टा जो है उसके इस तरह से और अधिक सम्मान और प्रचार होने लगा। वो नीचे कूदा तो ऐसे जैसे कि नीचे किसी ने बिठा दिया हो। गुरु तक इस बात की खबर पहुंची, गुरु जी आए और उनको भी एक बार विश्वास नहीं हुआ कि मेरे शिष्य ने इतना सब कुछ कर लिया। तो उन्होंने धीरे से उससे कहा कि क्या जो कुछ भी सुनने में आ रहा है वो क्या सच है, तुम्हारी उसने क्या जवाब दिया था। गुरु जी मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आपको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। ये कहलाती है श्रद्धा, ये कहलाता है आत्मविश्वास। इसके चलते जो व्यक्ति तपस्या करता है उसकी तपस्या कर्मों की निर्जरा करने वाली है। शरीर से भी तपस्या की जाती है, वाणी से भी तपस्या की जाती है और मन से भी। मैंने आपसे कहा था शरीर का तप क्या है, तो वो कहते हैं कि शरीर पर आने वाली विपत्तियों को शांत भाव से सहन करना, ये शरीर की तपस्या। और इतना ही नहीं, अपने शरीर से दूसरे का अहित ना हो इस बात का ध्यान रखना, दूसरे का हित हो सके तो अपने शरीर के द्वारा दूसरे की सेवा शुश्रूषा करना, ये शरीर का तप है। और इतना ही नहीं, गुरुजनों के प्रति शरीर से विनय इत्यादि प्रकट करना, झुकना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, माथा टेकना, ये सब शरीर का तप है। सवेरे से आके अपन भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, ये क्या है, इसको आप क्या समझते हैं, ये शरीर का तप कर रहे हैं अपन। अपने शरीर से जब दूसरे की मदद करते हैं उसके धर्म ध्यान में सहयोगी बनते हैं, लाओ आपकी थाली हम लगा देते हैं, आज हम पूजा की थाली आपकी हम लगा देते हैं, आप बैठो आपका कल का उपवास है आप हम, ये क्या चीज है, ये भागवता आपको नहीं मिला, आप ये वाला ले लो पूजा के लिए, नहीं ये तो हम ही लेंगे। तो ठीक है फिर वो तपस्या ही कहलाएगी शरीर से, आपने दूसरे की सेवा करी उससे शरीर, इतने में आपने तप कर लिया। कितना आसान बता रहा हूं, इतना आसान उपाय है, शरीर से तप ऐसे किया जा सकता, शरीर पर कोई रोग शोक व्याधि आ गई, विपत्ति आ गई, संकट आ गया, तो शांत भाव से सहन कर लेना, ये शरीर का तप है। वाणी का तप क्या है? वाणी का तप है प्रेम से बोलना, अच्छे वचन बोलना, आगम के अनुकूल बोलना, क्रोध लोभ भीरुत्व प्रत्याख्यानान वीति भाषणम, ये पांच भावनाएं ही वाणी का तप है। क्रोध से नहीं बोलना, भयवश नहीं बोलना है, और भीरुत्व हास्य हंसी मजाक में वचन बोलोगे तो जरूर से वाणी का तप समाप्त हो जाए। इन सब का प्रत्याख्यान करके अनुवीति भाषणम, आगम के अनुरूप बोलना, यही वाणी का तप है। और वो कहते हैं स्वाध्याय करना भी वाणी का तप है। ये आप वाणी का तप मैं तो कर ही रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये आपके वाणी का तप है। रात में वचन का होती है, सुबह से पूजन हो रही है, सुन रहे हैं अपन, सिर्फ इतना, ये वाणी का तप। स्वाध्याय को लिखा है कि ये वाणी का तप है, इसीलिए मुझे लगता है पुराने लोग जरूर से हम के आंखें कमजोर हो गई, मगर शास्त्र निकारो एक पन्ना, चाहे जौन शास्त्र को, कचिया तो नहीं है कि कल जौन पढ़ो तो वही मिल जावे, जौन चाहे शास्त्र को एक पन्ना निकालो अपने, चुपचाप ऐसो पढ़ो, कायस्तर करे धर धर करना है। लेकिन अब आज तो ऐसा है ही नहीं, आज तो इसको अपन क्या मानेंगे, अरे आडंबर है, ढकोसला है, ये पुराने लोग हैं, बड़े ट्रेडिशनल हैं, परंपरावादी हैं, आता जाता कुछ है नहीं, एक चार पन्ना एक ही पढ़ला, चार एक ऐसे खुद का स्वाध्याय। लेकिन इनको लगन है, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा लोगों को देख लो, भैया सुना दो कछु, स्वाध्याय करवा दो। ये जो है मैं सोचता हूँ कि पुराने लोगों ने छोटी छोटी प्रक्रियाएं, माथा तो टेकने जाना ही पड़ेगा मंदिर, तब तो करना ही पड़ेगा शरीर का, बाद में भोजन मिलेगा, चाय बाद में, पहले माथा टेक के आओ और स्वाध्याय करो, वाणी का तप। और मन का तप क्या है? तो कहते मन की निर्मलता, भाव न बिगड़े दिन भर इस बात का ध्यान रखना, मन की प्रसन्नता जिसको कहते हैं, दूसरे के कुछ कहने से अपने भाव अगर बिगड़ते हैं तो हमारा मन का तप तो समाप्त ही हो गया। अपने मन को नहीं बिगड़ने देना, मन तो कदम कदम पर, अपने मन का नहीं होता है तो कितनी जल्दी मन खराब हो जाता। वो कहते नहीं, अपने मन को बिगड़ने नहीं देना, मन की निर्मलता बनाए रखना, अपने भावों की प्रसन्नता बनाए रखना, यही मन का तप है। अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये तो तीन तरह का तप हो गया, लेकिन वास्तव में तप है क्या चीज और तप से लाभ क्या है? बस दो चीजें और अपन समझ लें, इच्छा निरोधा तपा। वहां संक्षिप्त इसी परिभाषा बना दी, अपनी इच्छाओं का निरोध कर देना ही वास्तव में तपस्या है। और देखें अपन तो शरीर से, मन से और वाणी से, सभी से इच्छाओं का निरोध करने पर ही तप हो सकता है। भीतर इच्छाएं बनी रहें या इच्छाएं जागृत रहें और हम बाह्य में अगर कुछ थोड़ा बहुत कर भी लें, खाने की तो इच्छा है लेकिन अब ठीक है, सब लोग कर रहे हैं तो हमको भी कर लेना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर सबके देखा देखी भी हमने तपस्या करी है तब मन में जो है ये भाव आना चाहिए कि नहीं, मैं जो है अपनी इच्छाओं को जीतने के लिए कर रहा हूं। एक सब मैंने चार चीजों से काम चलता है तो पांचवी की क्या आवश्यकता है? कई बार जो है आपको लगता होगा कि मैं इतनी जिद करने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा तो ले लो महाराज। मैं सोचता हूँ नंबर ऑफ आइटम क्यों बढ़ाए जाए, इतना सा लेकर के चार थो दाने मूंगफली के खा लिए पर नंबर ऑफ आइटम तो बढ़ गया, एक पपड़िया खा ली, एक थो थोड़ा सा पापड़ खा लिया शौक से, क्या हुआ? नंबर ऑफ आइटम बढ़ गया और क्या हुआ? इसके लिए पेट नहीं भरता उससे, ये जिब्बा भरती थोड़ी सी देर के लिए और कुछ नहीं। अगर ऐसा विचार कर लें तो क्या फट से जो है वहीं के वहीं तप हो गया, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इच्छाओं का निरोध करना समय समय पर अवसर निकाल करके, हाँ इसमें तो अवसर ढूंढना पड़ेगा कि कब मौका आए और मैं अपनी इच्छा को जीत लूं। कल मैंने कहा था आपसे कि इच्छाओं का नियंत्रण करना, इच्छाओं को संतुलित कर लेना तो संयम है, और इच्छा का निरोध ही कर देना वो तपस्या होगी। आज अपनी इच्छा का नियंत्रण कर लिया, चार चम्मच की जगह दो चम्मच शक्कर खाई, कल इच्छा का निरोध ही कर देंगे, दो ही चम्मच भी नहीं खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है एक दिन में? ऐसे रस परित्याग नाम का तप हो जाता है, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने आपको एक घटना नहीं सुनाई थी, एक श्वेतांबर अम्मा मिल गई थी हमको वहां दुर्ग में, तो बोली महाराज 25 सामायिक का नियम दे दो। अरे हमने कहा इतने सारे आप कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कर लेंगे, नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ना, एक सामायिक, एक कायस्तर और क्या, वो इस तरह उन्हें सामायिक न कह के उसको कायस्तर करना चाहिए, एक कायस्तर। हमने कहा 25 कायस्तर कर लेंगे दिन भर में, हां कर लेंगे हम, कब करते हैं आप? बोले कुछ नहीं, चार रोटी बनाई, देखा अब कोई आई नहीं रहा भोजन के लिए, अभी जब आएंगे तो गरम गरम फिर बना देंगे, तब तक एक का सर कर लो। फिर देखा अभी तो कोई नहीं आ रहा, एक मिनट हो गया, फिर एक का सर कर लो। दो पांच का सर तो ऐसे हो जाते महाराज, कई बार तो सौ सौ का सर हो जाते हैं दिन भर में। पाप कार्य के बीच में भी अवसर निकाल के और तपस्या कर ली। बताइए आप, दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आई नहीं रहा, दिमाग अपना बेकार खराब कर रहे हैं, काय सर करो, नौवा नमोकार करो, अब जब आएंगे जब देखेंगे। हम आपको सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि तपस्या इच्छाओं के निरोध से बहुत आसानी से हम जब चाहे तब कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। मंदिर में आए हैं, मेरा जब तक यहां हूं तब तक मौन तपस्या हो गई, वाणी का तप मेरा मौन है, या कि सिर्फ सूत्र वचन ही बोलूंगा, कोई तत्व चर्चा होगी तो ही करूंगा, बातचीत नहीं करूंगा, जय जिनेन्द्र कहूंगा बस, किसी से भी कहना है तो जय जिनेन्द्र, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मंदिर में, ये मेरा अपना तप हो गया उत्ते। और जब तक मैं मंदिर में हूं तब तक मेरे चारों प्रकार के भोजन का त्याग लो, ये घंटे भर के लिए तप हो गया, कितनी आसानी से। इस तरह हम चाहें तो अपनी इच्छाओं को समय समय पर जैसे ही अवसर मिले और जीत सकते हैं। आपने वारिसेन और पुष्पडाल की कहानी तो सुनी है, कैसी घटना है वो, दोनों जन मुनि महाराज बन गए थे, 12 बरस तक मुनि बने रहे, लेकिन पुष्पडाल के मन से इच्छाओं का निरोध नहीं हो पाया, 12 बरस निकल गए। वारिसेन महाराज देखते रहते थे कि इनके भीतर अभी इच्छाएं गई नहीं है, तब फिर इनको कैसे करें, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस सिर्फ सोचते रहते थे। देखो दूसरे की गलती देखकर जो उसे सुधारने की चेष्टा करता है दुखी होता है, सच्चा तो श्रद्धानी वही है। तो उन्होंने सोचा कि 12 बरस तक जो है अब क्या करें, इनको कैसे संभालें। तो एक दिन पुष्पडाल से कहा कि क्यों ना अपन अपने उस गांव में चलें जिसको अपन ने छोड़ दिया है। पुष्पडाल के मुख पर प्रसन्नता आ गई, हाँ चलो, क्योंकि उनके मन में अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव रह गया था। मैं चाहता भैया संस्कार है अनादि काल के, जल्दी से कहना तो बहुत आसान है, कह रही है तो कैसो आए है? हाँ ऐसा कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। तो चलो चले, और फिर सबसे पहले अपने घर ले गए, और जैसे ही घर ले गए और माँ को आवाज दी तो माँ एक बार चौंकी कि मेरा बेटा वारिसेन और ऐसे मुनि बनने के बाद घर कैसे आया। फिर भी माँ को अपने बेटे पर विश्वास था, तो उन्होंने कहा आओ महाराज, और फौरन भीतर जाके एक कटवे की चौकी और एक सोने का सिंहासन दोनों रख दिए कि देखें, परीक्षा मैंने भी कर ली अपने बेटे की, ऐसा नहीं है। तो जाके फौरन जो है पाटे पर बैठ गए, अब एक बचा सोने का, तो उस पर पुष्प डाल बैठ गए। माँ के हृदय में बहुत संतोष, कुछ बिगड़ा नहीं, मेरा बेटा ठीक है। अब कहा कि माँ जिन 32 रानियों को मैं छोड़ के गया था सब पूरे श्रृंगार के साथ एक बार मेरे सामने आए। अब थोड़ा मां के मन में आया कि क्या करना चाह रहा है, पर फिर भी हाँ ठीक है, सबको आने दिया और सब रानियां आकर के प्रणाम करके वो निकलती चली गई। और जब सब चले गए तब धीरे से पुष्पडाल मुनि महाराज से वारिसेन ने कहा कि महाराज मैं तो ये सब छोड़ चुका, अभी भी मेरा मन वापिस जाने का है, तुम्हारा मन हो तो ये 32 रानियां ये वैभव आप चाहो तो इसका उपभोग कर सकते हो। बस इतनी बात जो है पर्याप्त थी, धीरे से कह दिया, तब उनके मन में फौरन उनके मन में इतना अत्यंत वैराग उत्पन्न हो गया कि अरे एक अपनी जीवन साथी और जिसकी भी एक आंख कमजोर थी उसके लिए मैं नहीं छोड़ पाया, और ये एक से एक सुंदर 32 रानियां और इतना वैभव छोड़ के वारिसेन चले गए थे ये मुनि महाराज। फौरन अब वास्तव में वैराग हुआ और कहते हैं कि वारिसेन से कहा कि मुझे फिर से दीक्षा दो, अब वास्तव में मैं साधु बन के तपस्या करूंगा, अभी तक मैंने जो तपस्या करी उसमें मेरे अपनी इच्छाओं को जीत नहीं पाया था। भैया तपस्या तो इच्छाओं के जीतने का ही नाम है, हमारे अंदर भी अगर वाही में हम तपस्या शुरू करें तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वाही में तपस्या शुरू कर देवे तो देखते जाएं मेरी इच्छाएं कितनी सीमित हुई हैं कि नहीं हुई हैं, मेरी इच्छा है रोज रोज कमती होती चली जानी चाहिए। अपन अपनी भाषा में कहते कि भैया धर्म धर्म ध्यान करने लगे, हाँ हाँ तो छोड़ो, हाँ हाँ छोड़ो, मतलब अब कहा इतनी आपाधापी मचा रखी है, अब इतने धर्म ध्यान कर रहे हैं और फिर भी दुकान की इतनी भारी चिंता है, चार पैसे कम सही, चुपड़ी रोटी नहीं खाएंगे, बिना चुपड़ी खा लेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है, रसगुल्ला नहीं खाएंगे, लेकिन वहां तो पूरे दिन दिन भर और इतनी मेहनत करो, अपना सब कुछ ईमान बेचो काय के लिए, चार पैसे के लिए, अगर इतना मन में विचार आ जाए, हम देखेंगे कि घर में रहकर के भी व्यक्ति आसानी से बहुत सारी तपस्या तो वहीं रह के कर सकता है। अपन कर ही तो रहे हैं, बताइए नहीं कर रहे हैं क्या? आज से सात दिन पहले अगर किसी से आप कहते कि एक बार खाओ, हाँ एक बार खाओ, अभी तो परसों दूसरी बार, कोई नहीं मानता। और अब घर में लोग कह रहे हैं कि खा लो, दो सौ संजा हो गई, नहीं हमने तो छोड़ दिया, हम नहीं खाएंगे। ये किसने किसने भीतर डाल दिया, ये किसने नहीं डाला, ये हमारा मन है, इस मन को हमने काबू में कर लिया है कि नहीं अब तो अपने को नहीं खाना यानी नहीं खाना। कैसे अपन समय निकाल के और धर्म ध्यान में लगा रहे हैं, इसके पहले सात दिन पहले तक क्या इतना समय अपन धर्म के लिए देते थे क्या? और अगर रोज ऐसा देने लगे, पूरे जीवन भर के लिए नियम ले लें, तब आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और कर्मों की निर्जरा तो होगी, कर्मों की निर्जरा के लिए ही तपस्या है। एक और उदाहरण देता हूँ और बात पूरी हो जाएगी। निर्जरा के लिए ही तपस्या है, एक और उदाहरण देता हूँ और बात पूरी हो जाएगी। कर्मों की निर्जरा के लिए ही अपन को तपस्या करनी है, किसी और बाह्य सामग्री की आकांक्षा से नहीं करनी है। सब कुछ छोड़ करके और कोई वैभव इत्यादि चाहने लगे तो क्या मतलब हुआ, ऐसा ऐसा विचार करना चाहिए, नहीं तो फिर आगामी भोगों की आकांक्षा से अगर अपन ने तपस्या करी तो वो तपस्या ऐसी हुई, घाटे का सौदा हुआ है, पिताजी चले गए और दुकान लड़का के जिम्मे सौंप गए, कही भैया हम संध्या तक लौटिया हैं, तुम चलियो, भाव आओ तो तुम्हें संभालू मैं, तो हाओ संभालू उनको, सुनने शाम तक अच्छी बेची, संध्या को लौटे पिताजी से कही कितने की बेची, कहने 2000 की, नफा कितने भाव 100, कहने अरे घाटे का सौदा है, हम 1000 की बेचते और 200 रुपया कमाते, तुमने 2000 बेचे 100 कमाए, घाटे की सौदा भाई, तपस्या की तपस्या करी और मिला क्या, कर्मों की निद्रा हुई नहीं, उल्टा कर्म का बंद हो गया तो घाटे का सौदा हो गया। हमें ऐसा घाटे का सौदा नहीं करना, हमको तो कर्मों की निद्रा के लिए तपस्या करनी है। एक मुनि महाराज जी के बारे में आती है घटना कि वो तपस्या कर रहे थे, सबको मालूम है वो घटना, और अपन उसको फिर से रिवाइज करेंगे और नई वाली कहां से लाएं? अब देखो भाई वही वही तो रहेंगी घटना, तो वही, अब कोई अगर वैसी घटित होए अपन लोग के जीवन में, चौथा काल होता तो अपने को देखने को मिलती। आज भी जो है तपस्या करने वाले हैं, आचार्य महाराज ने मुक्तागिरी में 9 उपवास एक साथ किए थे, अपन तो कल्पना ही नहीं कर सकते, निर्जल 9 उपवास और 10वें दिन आराम और सब धर्म ध्यान पूरा कर रहे हैं, 28 मूल गुण का पालन करना, ऐसा नहीं है कि टेलीविजन देखते रहो और आराम से लेटे रहो और उपवास भी हो गया, ऐसा तो कोई भी कर लेगा, बहुत आसानी से कर लेगा, नहीं, 28 मूल गुण का पालन भी करना है और उपवास भी निर्जल किए उन्होंने, तो आज भी तपस्या तो है, कर्मों की निर्जरा का उद्देश्य अगर तो ऐसी तपस्या सार्थक होती, वो मुनि महाराज जी ध्यान में लीन थे। 12 प्रकार के तपों में सबसे श्रेष्ठ तप कौन सा है? ध्यान। वैसे तो विनय, भैयाव्रत, भैयाव्रत भी तप है, सेवा करना भी तपस्या है, और प्रायश्चित इत्यादि ग्रहण, अपन लोग सोचते हैं कि अरे प्रायश्चित ग्रहण करेंगे तो लोगों के सामने अपनी हंसी हो जाएगी कि इनको इनको प्रायश्चित मिला है, इनको दंड मिल गया है, नहीं, हमारे यहाँ पर उल्टा ही हिसाब है, अपनी आलोचना करके और सहर्ष गुरु के द्वारा अपने दोषों का प्रायश्चित लेना ये तपस्या है। और जब कोई मुनि महाराज इस तरह प्रायश्चित नाम का तप करते हैं तो आचार्य महाराज हमको बताया करते थे, आरती में बताया था कि देखो तुम लोग क्या सोचते हो, प्रायश्चित लेना हंसी खेल नहीं है, बहुत साहस का काम है, अपनी गलती निवेदन करके और निवेदन करना कि मेरी गलती भी मेरे लिए प्रायश्चित दे दो, और फिर गुरु से प्रायश्चित लेके प्रायश्चित में लीन हो जाते हैं जब मुनि महाराज, तब गुरु महाराज अपने स्थान से उठकर उन तपस्या करने वाले, प्रायश्चित ग्रहण करने वाले मुनि महाराज की 3 प्रदक्षिणा देके प्रणाम करके अपने यहाँ के बैठ जाते कि तुम तो प्रायश्चित लेके कर्मों की निद्रा करने के लिए तपने लीन हो गए, मुझे तुम्हें प्रायश्चित देने का विकल्प करना पड़ा, बताइएगा ये है तपस्या, इसको बोलते तपस्या। ऐसे सब तप हैं, विनय, भैयाव्रत, स्वाध्याय, स्वाध्याय भी तप है, लेकिन सबसे बड़ा तप ध्यान है, वो मुनि महाराज ध्यान रूपी तप में लीन थे। एक ग्वाला आया, उसकी बहुत सारी गायें थी, उसने देखा कि ये तो यहाँ खड़े हैं,
सवेरे से देख रहे हैं खड़े हैं, 12 बजे उसको भोजन करने जाना था। उसने कहा, ए बाबा ये हमारी सब गायें यहाँ पर चल रही हैं, देखते रहना हमारा अभी खाना खा के। ऐसे कह दिया उसने। महाराज जी को क्या पता कि तुम्हारी गायें कड़ी हैं कि तुम कहाँ जा रहे हैं। वो अपने ध्यान में ली, आंख भी नहीं खोली उन्होंने। अब वो जब तक भोजन करने गया तब तक वो गायें चरते चरते जंगल में भीतर निकल गई। अब जब वो लौट के आया तो उसने देखा एक भी गाय नहीं। बाबा हमारी गायें कहाँ गई? अब बाबा क्या बोले, वो तो चुप खड़े हैं महाराज जी। वो इधर उधर भागा वो और सब ढूंढ ढांढ के आया। वो तो बहुत दूर निकल गई थी घंटे भर में। तो अब क्या करें? तो उसके कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा तो गुस्सा आया उसको कि तुम इतने नहीं देख सकते, तुम इधर ले यहां पर खड़े हुए। हाँ, ऐसी भाषा का उपयोग करने लगे जैसे यहां पर खड़े कोई काम है नहीं, हम इतना सा काम सौंप के गए थे वो भी नहीं कि अब कहां हम गायें अपनी ढूंढे। और ढूंढते ढूंढते उसको 4:30 बज गए, गोधूली वेला हो गई, गायें अपने वापस जंगल से लौटने लगी और लौट करके वही महाराज के पास आके इकट्ठी हो गई। ये ढूंढते ढूंढते आया तो अच्छा ये बात है, पहले सबको भगा दिया है और जैसे ही मैं गया तो सब गायें इकट्ठी करके ले जाना चाह रहा था, अभी बताता। और मैं इतनी देर से इतना चीख चिल्ला रहा हूं, पूछ रहा हूं तो बोलते भी नहीं है, सुना ही नहीं पड़ता है, इसके कानों का भी इलाज करना पड़ेगा। अब गुस्सा तो गुस्सा है, किसी को नहीं छोड़ती वो है। तो मैंने क्या किया था, कीले ले आया दो और दोनों तरफ कानों में कीले घुसा दिए और हथौड़ी से दोनों तरफ से ठोकना शुरू कर दिया। कहते हैं कि पूरा शरीर लहू लुहान हो गया, इंद्र का आसन भी कंपायमान हो गया। जो वहां के रक्षक देव थे उन्होंने आके कहा कि आप कहें तो मैं इसे दंड दूं। उन्होंने कहा नहीं, पुराना हिसाब चुकता नहीं करूंगा तो बहुत दिक्कत होगी, ये तो हिसाब चुकता हो रहा है, चुकता हो जाने दो। कर्मों की निर्जरा होना मतलब हिसाब चुकता होना, पुराना जो कमाया होगा वो सब चुकता करना पड़ेगा, इसके जो जिम्मे था ले लेने दो, कोई कुछ मत बोलो, शांति से समता भाव पूर्वक सहन करते रहे। कहते हैं उनकी तपस्या के फलस्वरूप उनको फिर कैवल्य या जो भी प्राप्ति हुई वो सब प्राप्त हुआ। कहने का आशय क्या है, सिर्फ यही कि जो भी शरीर के ऊपर विपत्ति आए अपने आत्म कल्याण की भावना और निर्जरा की भावना से ये सोचकर कि मुझे अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना है, इस जीवन में कर लूंगा तो इस जीवन में ही पार हो जाऊंगा और अगले जीवन तक रखे रहूंगा पड़ेगा। इसलिए तपस्या जो है वो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए हम लें। जैसे आम शुरू में कैसा होता, हरे रंग का मटमैला सा है और उसमें कोई रस नहीं रहता, लेकिन अगर वो पक जाए तो पीला भी हो जाता, उज्जवल भी हो जाता, उसमें परिपक्वता आ जाती है, सरसता भी आ जाती, मीठापन भी आ जाता है। तपस्या क्या देता है जीवन में, परिपक्वता देता है, मीठापन आ जाता है जीवन में, उज्जवलता आ जाती जीवन में। जैसे आम में आ गई वैसे जो है हमारे जीवन में उज्जवलता लाने वाला, हमारे जीवन में सरसता लाने वाला और हमारे जीवन को परिपक्व बनाने वाला यही तप है। माटी तपती है, घड़ा बन जाती है, हाथों हाथ लोग उसे लेते हैं। आचार्य श्री हमेशा उदाहरण देते हैं कि बड़ा बनना हो तो बड़ी तपस्या करना पड़ती। बड़ा पुर्दों की दार को बनाओ चाहे कछु को बनाओ, बड़ा तो बड़ा कब बड़ा बनता, वो कहते जब जब चारों तरफ से आग चल रही है और उसमें जब वो गिरता है ना तब बनता वो बड़ा, बहुत तपना पड़ता है उसमें, चिड़ गया वो कढ़ाई में तब बड़ा बनता है वो, ऐसे नहीं बनता। किसी तरह से जो है अपने जीवन में भी हमको अगर ऊंचाइयां छूना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें भी अपनी शक्ति के अनुसार तप स्वीकार करना चाहिए, इसी भावना के साथ कि हम सबके जीवन में श्रद्धा पूर्वक तपस्या आवे और कर्मों की हम निद्रा करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि।